आज है 3 अगस्त दिन गुरुवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नोटा के विकल्प के साथ ही होगी।
जून चुनाव में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उसमें तो नोटा आ ही नहीं सकता, क्यों तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने गलती की है।
भारत प्रशासित कश्मीर में हुई मुठभेड़ में 2 चरमपंथी और 1 मेजर सहित 3 सैनिकों की मौत। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद 26 साल पुराना एक हत्याकांड फिर चर्चा में।
नीतीश कुमार पूछा कि ये हो से ककर वोट दलही, तो हम कांग्रेस के दे रहे, कांग्रेस के दे लिए। जैसे हम
आज होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 8 अगस्त को होने वाले चुनावों में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नोटा के विकल्प के साथ ही होगी। इससे पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी थी कि अगर नोटा पर रोक नहीं दी गई तो विधायकों के वोट दूसरे पक्ष के लोग खरीद लेंगे और उनके उम्मीदवार चुनाव हार जाएंगे। उत्तरी भारत के हरियाणा और राजस्थान की 50 से अधिक महिलाओं ने शिकायत की है कि किसी ने उन्हें बेहोश करके रहस्यमय तरीके से उनके बाल काट लिए। इस रहस्य को सुलझाने में पुलिस अब तक नाकाम रही है, जबकि यहां की महिलाएं इससे डरी हुई हैं और चिंतित हैं। इस काल्पनिक हजाम की पहली खबर जुलाई में राजस्थान से आई थी, लेकिन अब इस तरह की खबरें हरियाणा और यहां तक की राजधानी दिल्ली से भी आने लगी हैं। वेनेजुएला के चुनाव आयोग के प्रमुख तिबिसे लुसेना ने रविवार को संविधान सभा के लिए चुनावों में धोखाधड़ी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इससे पहले चुनावों के लिए वोटिंग मशीन उपलब्ध कराने वाली लंदन स्थित कंपनी स्मार्टमैटिक ने कहा था कि चुनाव आयोग ने चुनाव में वोट देने वालों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश की है।
Es una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamento.
ये गलत आंकड़ों को आधार बनाकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया दावा है, क्योंकि ये डेटा केवल चुनाव आयोग के पास ही मौजूद होता है। मामला इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि स्मार्टमैटिक ने चुनाव में भागीदारी की थी और उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के सॉफ्टवेयर के लिए इंक्रिप्शन भी बनाई थी। उनकी भागीदारी के सिलसिले में मशीन के सॉफ्टवेयर के संबंध में सर्टिफिकेशन भी हुआ था और अब वोटों की गिनती की पूरी व्यवस्था ही संदेह के घेरे में पड़ गई है। ये थी वेनेजुएला की चुनाव आयोग की प्रमुख तिबिसे लुसेना। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में आने वाले 3 दशक में आंखों की रोशनी खोने वाले लोगों की संख्या में 3 गुना तक इजाफा हो सकता है। स्वास्थ्य पर जानकारी छापने वाली लैंसेट जर्नल के एक अनुमान के अनुसार अगर इस स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया जाता है तो साल 2050 तक ये आंकड़ा 3.5 करोड़ से बढ़कर 11.5 करोड़ तक हो जाएगा। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर रूपर्ट बोन ने बीबीसी को बताया। कैटरैक्ट और उम्र के साथ होने वाली कमजोर मांसपेशियां इसका कारण होंगी। साथ ही नज़र की समस्या के लिए चश्मे के इस्तेमाल की जरूरत होती है और ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। इस बात को अब स्वीकार किया जा रहा है कि चश्मा लगाकर नज़र की कई मुश्किलों को ठीक किया जा सकता है और ये बेहद ज़रूरी है। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर रूपर्ट बोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में एक अधिकारी का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए चालू किए गए फोन नंबर पर उन्हें हजारों शिकायतें मिली हैं। भ्रष्टाचार रोधी कमीशन के प्रवक्ता प्रणब भट्टाचार्य ने बीबीसी को बताया कि बीते सप्ताह सरकार ने हॉटलाइन नंबर 106 चालू किया था, जिसके बाद से अब तक उन्हें 75,000 शिकायतें मिली हैं। उनका कहना है कि अधिकतर शिकायतकर्ताओं की शिकायत परिवार में लड़ाई झगड़े और दहेज की मांग से संबंधित थी और कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। कमीशन ने भ्रष्टाचार से संबंधित 2,000 से अधिक शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। स्पेन की पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है जो ईरानी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में लाती थी। यूरोपीय संघ की एजेंसी यूरोपोल ने कहा है कि 1 साल तक चली मुहिम के तहत करीब 100 लोगों को पकड़ा गया है। गिरोह के संदिग्ध सरगना को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया है। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से। गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आज एक झटका लगा है, इस खबर पर आएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं, अब से कुछ देर पहले राज्यसभा में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत की विदेश नीति को लेकर चीन के संबंध में एक वक्तव्य दिया है।
With regard to the boundary in Sikkim sector, there are still steps to be covered before the boundary is finalized. This understanding has been reflected in the common understanding of December 2012 in point number 12.
चीन पर सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर सुषमा स्वराज ने कहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, समझदारी इसमें है कि मुद्दों को राजनयिक तरीकों से हल करें। उन्होंने कहा कि चीन के साथ डोकलाम का मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत है। हम लौट रहे हैं उस खबर पर जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में अभी किया था। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में नोटा यानी चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने के विकल्प के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी खारिज कर दी। यानी गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नोटा के विकल्प के साथ ही होगी। इस खबर पर और जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली खंडपीठ ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस पार्टी की अर्जी को खारिज तो कर दिया, मगर आश्वासन भी दिया कि वो इस मामले का निरीक्षण भी करेगी। इसी महीने की 8 तारीख को गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होगा। कुल मिलाकर 4 लोग इन 3 सीटों के लिए मैदान में हैं। इनमें से एक पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विधायक बलवंत सिंह राजपूत शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल भी चुनाव लड़ रहे हैं। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं को लेकर राज्यसभा में बुधवार को भी काफी हंगामा हुआ था। हंगामे के दौरान कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कहना था कि सिर्फ गुजरात के राज्यसभा के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नोटा का प्रावधान किया है।
ये पूरे देश के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ गुजरात के लिए ही है। आप गुजरात का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो और देश का अलग बन गया। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में था कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे, अब गुजरात में भी आ गया उस लिस्ट में कि जहां अलग कॉन्स्टिट्यूशन।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला का कहना था,
देखो सुप्रीम कोर्ट तो ये कहेगी कि चुनाव आयोग इस मामले में निर्णय ले। है क्या कि दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफिक्शन लॉ में क्लियर कट प्रोविजन है कि जो पार्टी विप का उल्लंघन कर उसके खिलाफ कार्रवाई हो, दल बदल डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जो इन चुनाव में एंटी डिफिक्शन लॉ लागू होता है, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उसमें तो नोटा आ ही नहीं सकता, क्यों तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने गलती की है।
वहीं समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, मगर चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जरूर जताई।
राज्यसभा का चुनाव जो है वहाँ फ्री वोटिंग होती है, तो जब फ्री वोटिंग हो रही तो फिर नोटा का प्रश्न कहाँ पर से पैदा होता है, क्योंकि जिसको नहीं वोट देना वो आएगा नहीं, विप का उल्लंघन करेगा, और जो विप का उल्लंघन करेगा तो उसका अपने आप सत्ता खत्म हो जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने कहा कि डायरेक्ट चुनाव में नोटा होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट में। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष नोटा का विरोध कर रहे हैं। गुजरात की 3 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा के चुनाव में नोटा के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी खुश नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था।
अभी जो राज्यसभा के चुनाव में नोटा जो बैलेट पेपर्स पे डाला गया है उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन खड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट चुनाव में नोटा का प्रोविजन जो मूल भावना है राज्यसभा के चुनाव की उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इसको लेकर हम लोगों ने मांग की है कि नोटा तत्काल खत्म किया जाना चाहिए और यही नोटा खत्म करना निष्पक्ष भयमुक्त माहौल में चुनाव के लिए जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के रुख के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस के विधायक बंगलुरु के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। जानकारों का कहना है कि राज्यसभा के चुनाव में विधायकों को पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाकर ही वोट देना होता है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों के खिलाफ जारी कार्रवाई में लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने के बाद आज फिर हुई मुठभेड़ में दो स्थानीय चरमपंथी मारे गए हैं। वहीं सेना की एक टुकड़ी पर चरमपंथियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक मेजर समेत 3 सैनिक मारे गए। पिछले 7 महीने में सैन्य ऑपरेशन के दौरान 140 से अधिक चरमपंथी और 40 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
ताज़ा मुठभेड़ कुलगाम जिले के बागवानपोरा में हुई, जहां आकिब और सुहेल नामी स्थानीय चरमपंथी मारे गए। दोनों के जनाजे में हजारों लोगों ने भाग लिया और इस बीच नकाब पहने कुछ चरमपंथियों ने इन्हें गन सल्यूट भी दिया। कुलगाम के पड़ोसी जिला शोपियान में भी चरमपंथियों ने सेना की एक टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें मेजर कमलेश पांडे, सिपाही तेंजिन चौंतीन और सिपाही कृपाल सिंह मारे गए। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक हमलावर फरार होने में सफल हो गए, परंतु इन्हें ढूंढने के लिए कई इलाकों का घेरा किया गया है। चरमपंथी गुट हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और सैन्य प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। कोर हेडक्वार्टर पर मारे गए सैनिकों को मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को भी पुलवामा के हाकरीपोरा गांव में लश्कर तैयबा के कुख्यात कमांडर अबू दुजाना को अपने साथी आरिफ लेलहारी समेत एक लंबी लड़ाई के बाद मार गिराया गया। इस घटना के उपरांत घाटी भर में छात्रों और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद बुधवार को शिक्षा संस्थानों को बंद और इंटरनेट को प्रतिबंधित किया गया। कल रात से ही कई इलाकों में ऑपरेशन जारी था और इसी बीच कुलगाम की मुठभेड़ हुई। मंगल को पुलवामा में घेरे में फंसे लश्कर कमांडर अबू दुजाना को बचाने के लिए हजारों लोगों ने मुठभेड़ की जगह के निकट प्रदर्शन किए, तो पुलिस और फोर्सेज ने इन पर फायरिंग की, जिसमें 2 युवा प्रदर्शनकारी मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर से मिलिटेंसी का सफाया करने का जो ऑपरेशन इस साल 5 जनवरी से शुरू किया गया था, इसमें अब तक सब्जार, जुनैद, बशीर लश्कर और अबू दुजाना नामी कुख्यात कमांडरों समेत 141 चरमपंथी मारे गए हैं। इसी समय के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग और भिन्न भिन्न मुठभेड़ों में मारे गए सैनिकों, पुलिस वालों और दूसरे सुरक्षा कर्मियों की संख्या 43 पहुंच गई है। इस बीच सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेएस साधु और पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मुनीर खान ने एक साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि प्रदर्शनों के बावजूद आखिरी चरमपंथी के जिंदा रहने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सैनिक अधिकारियों और पुलिस अफसरों का कहना है कि कश्मीर में जारी चरमपंथियों के विरुद्ध यह ऑपरेशन पिछले 25 वर्ष में पहली बार इतना फैला हुआ और लगातार किया जा रहा है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
बिहार में बीते दिनों हुई जबरदस्त राजनीतिक उठापटक के बाद 26 साल पुराना एक हत्याकांड इन दिनों फिर चर्चा में है। क्या है ये मामला, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की जुबानी।
ये मामला पटना जिले के पंडारक थाने का है। 1991 के 16 नवंबर को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान का दिन था। उस दिन इस थाना इलाके के ढीवर गांव के प्राथमिक विद्यालय में सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से संबंधित FIR में नीतीश कुमार सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। यह इलाका बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तब नीतीश इस सीट पर जनता दल के उम्मीदवार थे। हत्या के चंद महीनों पहले सीताराम सिंह की शादी हुई थी। सीताराम सिंह 4 भाई थे। उनके एक भाई राधा कृष्ण सिंह वारदात वाले दिन सीताराम के साथ ही वोट डालने गए थे। वे बताते हैं,
फिर हम लोग तुरते फिर वोट दिए, उसके बाद देने लगे दिए। उसके बाद हमें आया नीतीश कुमार, पूछा कि जे कि ए हो से ककर वोट दलही, तो हम कांग्रेस के दे रही, कांग्रेस के दिलिये। जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे हमारा भाई भी बोला कि कांग्रेस के दिलिये, हो की कर भी, तो ऐसे ही बोला। उसके बाद में वो निकाला और ठोक दिया हमारे भाई, गोली नीतीश कुमार ने चलाई, हम सटले थे दोनों भाई।
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार पटना हाई कोर्ट में इस मामले में राधा कृष्ण सिंह के वकील हैं। उनके मुताबिक राधा कृष्ण ने नीतीश कुमार द्वारा गोली चलाने की बात पटना हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में भी कही है। दीनू बताते हैं कि इस आपराधिक मामले में नीतीश कुमार को बरी नहीं किया गया है।
पुलिस ने इनको कहा कि अभियुक्त ऐसे हैं जिनके डर से गवाही देने को तैयार नहीं है, इसलिए केस दर्ज है लेकिन साक्ष्य की कमी है, इसको रिपोर्ट जमा कर दिए। इस पर डिसीज का भाई ने कंप्लेंट फाइल किया और उस पर नीतीश कुमार और दुलारसन यादव को 31/8/2009 को 302 दफा में और 27 में संज्ञान ले लिया गया है, जिसको हाईकोर्ट ने आगे कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में जो नीतीश कुमार संज्ञान लेने के आदेश को चैलेंज किए हैं वह मैटर हाईकोर्ट में लंबित है।
शिकायत याचिका दायर करने वाले अशोक सिंह सीताराम सिंह के मौसेरे भाई हैं। 16 नवंबर के वारदात में वे भी घायल हुए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का कहना है कि नीतीश को बरी किए जाने के बाद राजनीतिक दुर्भावना से यह शिकायत याचिका दायर करवाई गई। 27 जुलाई को नीतीश के 6ठी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जदयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेता और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री ललन सिंह ने कहा था,
उसके पीछे कोई ना कोई होगा, उसको खड़ा किया गया होगा। और वो अशोक सिंह ने बाद में एफिडेविट करके ये कहा कि मुझको किडनैप करके उठा के घर से ले जाया गया और ले जाके मुझसे जबरन सादा कागज पर दस्तखत कराया गया और दस्तखत करा के कंप्लेंट पिटीशन फाइल किया गया। ये उस अशोक सिंह का स्टेटमेंट है।
वहीं 26 जुलाई से ही लालू प्रसाद यादव भी रह रहकर इस मामले के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं। मनीष चांदिल्य, BBC पटना।
कार्यक्रम में आगे आपकी राय यानी आपके खत, लेकिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए नए प्रतिबंध रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कारोबारी युद्ध की घोषणा करने के बराबर हैं। BBCHindi.com की एक रिपोर्ट के साथ सरोज सिंह।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के खिलाफ प्रतिबंध वाले विधेयक पर दस्तखत के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने इसे रूस के खिलाफ फुल स्केल ट्रेड वॉर यानी बड़े पैमाने पर व्यापारिक जंग करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका का ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप की दुर्बलता को दिखाता है, जो अमरीकी कांग्रेस के हाथों अपमानित हो रहे हैं। रूस पर अमरीका के नए प्रतिबंधों का मकसद बीते साल हुए अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित दखलंदाजी और यूक्रेन में आक्रामकता के लिए रूस को दंडित करना है। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों के बाद अमरीका के लोग अब एक तय सीमा तक ही रूस की ऊर्जा संबंधित परियोजनाओं में निवेश कर पाएंगे। इसके अलावा अमरीकी कंपनियों के लिए रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाना भी आसान नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा है कि अमरीका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध के बाद नए अमरीकी प्रशासन के साथ रिश्ते सुधारने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। वैसे अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरे मामले में रूस के खिलाफ प्रतिबंध के विरोध में थे, लेकिन विधेयक को सीनेट से मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, जिसके बाद उनके पास इस पर दस्तखत करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। रूस पर पिछले साल अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगता रहा है, लेकिन रूस इससे इनकार करता रहा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच रूस की कथित भूमिका के खिलाफ अमरीका में जाँच भी जारी है।
रूस अमरीका के बीच कारोबारी युद्ध की आशंका, ब्यौरा दे रही थी हमारी सहयोगी सरोज सिंह। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान के विभाजन के 70 साल पूरे होने के मौके पर हम आपको विभाजन की त्रासदी से जुड़ी सच्ची कहानियां सुना रहे हैं। आज इसी कड़ी में सुनिए भारतीय पंजाब के फिरोजपुर और उसके लोगों की कहानी, जिनकी किस्मत का फैसला दो अंग्रेजों ने लंच की टेबल पर बैठकर किया। सुनिए इशलीन कौर की जुबानी।
मीना बीबी बंटवारे से पहले फिरोजपुर में रहती थी। बंटवारा होने से सिर्फ एक दिन पहले उन्हें पता लगा कि उन्हें फिरोजपुर छोड़कर सरहद पार नए मुल्क जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के बूरेवाला गांव में बसी मीना बीबी 70 साल पहले हुई इस त्रासदी को भुला नहीं पाई
है। बड़े औखे आए थे, आए
19 लोग हमारे मारे गए। बड़ी मुश्किल से हम इस पार आए, बड़ी मुश्किल से। जो लड़कियां थी वो अपना मुंह काला करके मिट्टी पोत कर पाकिस्तान पहुंची।
रामपाल शोरी पिछले 84 सालों से फिरोजपुर में रहते हैं। हिंदू होने की वजह से शोरी को अपना मुल्क छोड़ना तो नहीं पड़ा, लेकिन अपनों को खोने का गम उन्हें आज भी है।
हालात इतने खराब थे, हर एक आदमी तैयार बैठा था भागने के लिए कि पता नहीं कैसा वक्त आ जाए। और लेडीज पर्टिकुलरली 3-3 ड्रेसेस ऊपर नीचे पहन के रखती थी कि अगर दौड़ना पड़ा तो किधर जाएंगे, कम से कम कपड़े तो होंगे पास।
मीना बीबी और शोरी जैसे लाखों लोगों का बचपन नक्शे पर खींची गई एक लकीर के कारण तबाह हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन और सिरिल रैटक्लिफ ने आखिरी पल में बंटवारे की लकीर में ये बदलाव किया, जिससे फिरोजपुर में रहने वाले हजारों लोगों की जानें दांव पर लगी और जो इस त्रासदी से बचकर निकले उनके लिए जख्म आज भी हरे हैं।
सी सारा कुछ ही छड़ अंदर तो लेना चकना की सी आदमी जानना लेके हो आ गई मेरे पेके ना कसूर चकरे।
हम सब कुछ छोड़ कर आए, बस अपनी जान बचाई और आ गए। मेरे माँ बाप हमें कसूर में मिले और मेरे पिता ने सिर्फ एक साफा पहना हुआ था, उनके पास कुर्ता भी नहीं था। मैंने अपनी एक कुर्ती उनको दी, मेरे पास कपड़ों का एक ट्रंक था, तौबा मेरी तौबा, उसमें से मैंने किसी को सलवार दी तो किसी को कुर्ती दी।
शोरी ने 12 साल की उम्र में जो मंजर देखा वो 70 साल बाद भी भूल नहीं पाए हैं।
जब ट्रेनें आती थी फ्रॉम लाहौर साइड, उनमें जख्मी लोग ऊपर बैठे हुए होते थे, किसी का बाजू कटा, सिर में इंजरी है, किसी के कुछ, और जो किलिंग्स थी वो मोस्ट ब्रूटल कह सकते हैं आप, ह्यूमैनिटी से बहुत नीचे आदमी जब चला जाए तो इंसानियत से गिर जाए, तो ऐसी थी कि कत्ले आम आम था।
सिरिल रैटक्लिफ के निजी सचिव क्रिस्टोफर बोमोन ने 1992 में द टेलीग्राफ में रैटक्लिफ और माउंटबेटन के बीच हुए उस लंच के बारे में लिखा जिसमें उन्हें बताया गया कि रैटक्लिफ पंजाब की सीमा पहले बना चुके थे। उस नक्शे में फिरोजपुर पाकिस्तान को दिया जाना था, लेकिन माउंटबेटन के कहने पर रैटक्लिफ ने फिरोजपुर हिंदुस्तान को दे दिया। क्रिस्टोफर बोमोंट के बेटे रॉबर्ट बोमोंट ने बीबीसी को बताया कि उनके पिता के मुताबिक पंजाब में हुए नरसंहार की जिम्मेदारी माउंटबेटन को लेनी चाहिए थी।
My father despised Mountbatten.
मेरे पिता माउंटबेटन से नफरत करते थे। बंटवारे की लकीर के फैसले से वो काफी परेशान थे क्योंकि लकीर का फैसला तो पहले ही हो चुका था। दस्तावेज पंजाब के गवर्नर सर एवन जेनकिंस ने दे दिए थे और सबको पता था कि लकीर कहाँ बनने वाली है। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि माउंटबेटन नेहरू के दबाव में आ गए, जिस वजह से हजारों मासूमों की जानें गईं। मेरे पिता को पता था कि बंटवारे का नतीजा बुरा होगा, लेकिन आखिरी वक्त में लकीर बदलने से हालात बदतर हो गए।
रैटक्लिफ और माउंटबेटन के एक छोटे से फैसले ने सिर्फ मीना बीबी और शोरी की नहीं बल्कि ऐसी हजारों जिंदगियां बदल डाली और उसके जख्म 70 साल बाद भी ताजा हैं।
भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी से जुड़ी कहानियों की श्रृंखला में आप सुन रहे थे अभी इश्लीन कौर की जुबानी। और एक नज़र बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर, अभी अभी रविकेश मिश्रा ने एक बात हमसे पूछी है, जानना चाहते हैं कि इस प्रसारण का कोई समय निश्चित है क्या। तो रविकेश जी और हम अपने तमाम सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि बीबीसी हिंदी से हर दिन 2 कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे और दिन भर 7:30 बजे जो आप अभी सुन रहे हैं, और ये दोनों ही कार्यक्रम न केवल रेडियो बल्कि bbchindi.com पर और आपके मोबाइल फ़ोन पर फेसबुक पर भी लाइव प्रसारित हो रहे हैं। और अब श्रोताओं की चिट्ठियां।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
नमस्कार।
नमस्कार इंदु पांडे का भी। और मैं देख रहा हूं इंदु जी, एक सफेद रंग का कागज है आपके हाथ में जिसमें नीली स्याही से किसी ने चिट्ठी लिख के भेजी है।
बहुत प्यारी चिट्ठी है संजय कुमार झा की, ये झंझारपुर मधुबनी बिहार से लिखते हैं। कहते हैं कि मैंने ही शिकायत की थी कि महिला पत्रकार ठीक से अखबारों की समीक्षा नहीं कर पाती, और इस शिकायत से महिलाओं को कमज़ोर समझना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। तो मेरे पत्र से अगर किसी महिला पत्रकार को दुख पहुँचा हो तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ।
देखिए इंदु जी, हमारे श्रोताओं की ये खूबी है, अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो गया है तो सीधे सीधे, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा है कि मकसद वैसा नहीं था। संजय भाई, हमें मालूम है कि आपने जो कुछ लिखा होगा किसी रॉ में बह के लिख दिया होगा, लेकिन अब आपने उसको दुरुस्त भी कर लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सुनते रहिए और अपनी राय जाहिर करते रहिए।
और ये पोस्ट कार्ड है विष्णु वर्मा ककोली फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश से। हमेशा की तरह विवेचना बहुत अच्छी लगी इनको, और एक सलाह देते हैं कि जब श्रोताओं के पत्रों को किसी कारणवश आप शामिल ना कर सकें तो उस श्रोता को पत्रोत्तर ही कर दें।
अच्छा, ये चाहते हैं कि हम उनको रेडियो पे अगर नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं चिट्ठियां, तो उनको चिट्ठी वापस लिखें। भाई आप तो हमारा काम 1000 गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि इतनी चिट्ठियां आती हैं और बहुत कम हम इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन सबको जवाब देना भी तो एक बड़ा, असंभव तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है।
ज़रूर। और ये दूसरी चिट्ठी हमारे पास जो आई है, ये लिखा है रायपुर किशनगंज बिहार से उमा शंकर दास ने। लिखते हैं कि मोहनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत इंडिया बोल सुना, तो ये कहते हैं कि आलोक पुतुल अपना जब पक्ष रख रहे थे तो मोहनलाल जी ने उस बात का पुरजोर खंडन किया जो इनको अच्छी नहीं लगी।
जी हाँ, ये पोस्ट कार्ड इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने शिकायत ये की है कि एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर तेजस्वी यादव को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए, सवाल उठाए, बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि जब इंडिया बोल कार्यक्रम होता है तो उसमें खुली बहस होती है, चाहे वो श्रोता हों, हमारे संवाददाता हों, या कार्यक्रम को एंकर करने वाले या प्रस्तुत करने वाले हमारे साथी। अपने अपने विचार सब अपनी ढंग से जाहिर करते हैं और यही तो मकसद भी है उसका।
अच्छा, हमारे पास ये मेल आया है अशोक पांडे का, बलरामपुर सतना मध्य प्रदेश से। लिखते हैं कि पहली चीज तानाशाही छोड़िए और हम
तानाशाही छोड़िए
बीबीसी के लिए, और हम पर उर्दू थोपना बंद कीजिए। क्या आपके पास हिंदी के संवाददाताओं की कमी है? और अगर नहीं तो आपने बीबीसी उर्दू से खबर उधार लेकर क्यों चलाई?
अब देखिए अशोक पांडे जी, ये तो मैं इसका जवाब देने के बजाय एक और चिट्ठी मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही नौजवान श्रोता हैं जिनका नाम है सत्यम सिद्धार्थ। लिखते हैं, बीबीसी हिंदी पर मेरी चिट्ठियाँ क्या इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि मैं बहुत छोटा हूँ? पर याद रखो, मैं छोटा ज़रूर हूँ पर मेरे भी सपने हैं। अब इन्होंने आगे जो बात लिखी है वो आपके काम की होगी। उनका कहना है कि मैं अपने दिल की गहराइयों से पाकिस्तान से उस महिला रिपोर्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रिपोर्ट दी थी। उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। ये सत्यम सिद्धार्थ 19 साल के हैं और बांका में रहते हैं। तो अशोक पांडे जी, जो बलरामपुर सतना में रहते हैं, उनको उर्दू का प्रयोग पसंद नहीं आया और इनको पसंद आया। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। बस हमारा मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई खबर हो तो आप तक पहुंचे, अगर वो हिंदी में ना हो तो कम अज कम उर्दू में ही पहुंचे। हालांकि हमने माफी आपसे जरूर मांग ली थी कि बहुत गाढ़ी उर्दू है, कुछ चीजें तो मुझे खुद समझ में नहीं आई थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है
जी। और ये जो दूसरा मेल हमारे पास आया है, ये कहते हैं रामचंद सुथार गांव फलसूण जैसलमेर राजस्थान से कि बीबीसी हिंग्लिश सेवा कर देनी चाहिए।
हिंग्लिश
जी,
अभी उर्दू की बात थी, अब हिंग्लिश की। अच्छा, क्या कहते हैं सुथार?
क्योंकि आजकल आपकी दोनों सभाओं में व्यापक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, विशेष रूप से खेल समाचारों में लोग स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स अपडेट आदि नामों से इसको उच्चारित करते हैं।
ये आप मुझे तो सवाल कीजिए मत, क्योंकि इंदु जी ये तो आप पर ही उतनी टिप्पणी है मुझ पे कम है, बल्कि आप पर ज्यादा है। ये बात सुधार साहब जो आपने कही, हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां पर हिंदी का शब्द हो वहां अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल कम से कम किया जाए।
मेरठ से नरसिंह लिखते हैं कि बंटवारे की लकीर शीर्षक पर भारत पाकिस्तान विभाजन की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, और लेकिन जो प्रोग्राम, जो जितना भी उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा उनको।
जी, हमारे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के 70 साल पूरे हो रहे हैं इसी महीने 14-15 अगस्त को। तो bbchindi.com पर बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, रेडियो पर भी हम कार्यक्रम आपको सुनाते रहेंगे और दो विशेष कार्यक्रम आने वाले दिनों में आप सुनेंगे। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो आपकी इजाजत हो तो पता बता दूं।
जरूर।
बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता आप बताएं।
यह hindi.letters@bbc.co.uk।
बहुत बहुत शुक्रिया और हमें सुनते रहिए। नमस्कार।
चिट्ठियों के बाद खेल की खबरें लेकर भी इंदु पांडे स्टूडियो में आ चुकी हैं।
शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने स्टंप्स तक पहली इनिंग में 3 विकेट खोकर के 344 रन बना लिए। दिन का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 128 और अजिंक्य रहाणे 103 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 211 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इससे पहले इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और शुरुआत हालांकि भारत की बहुत अच्छी नहीं रही क्योंकि 56 के स्कोर पर शिखर धवन आउट जो हो गए थे। करियर का 50वां टेस्ट खेल रहे पुजारा ने मैच में शानदार सेंचुरी लगाई, ये उनके टेस्ट करियर की 13वीं सेंचुरी रही। पुजारा ने अपने 100 रन पूरे किए और इससे पहले उन्होंने अपने 50 रन 112 बॉल पर पूरे किए थे। चेतेश्वर पुजारा ने इस मैच में अपने टेस्ट करियर में अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए हैं, और मैच में 34 रन बनाते ही उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली, और ऐसा करने वाले वो भारत के 15वें खिलाड़ी हैं।
बहुत शुक्रिया। खेल समाचारों के बाद थोड़ी देर में भारत में बजने वाले हैं रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर 8 अगस्त को होने वाले चुनावों में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया है। उत्तरी भारत के हरियाणा और राजस्थान में 50 से अधिक महिलाओं ने शिकायत की है कि किसी ने उन्हें बेहोश कर रहस्यमय तरीके से उनके बाल काट लिए हैं। वेनेजुएला के चुनाव आयोग की प्रमुख दिविसे लुसेना ने रविवार को संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में धोखाधड़ी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी मानसी दास और कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। दिन भर में आज इतना ही, हमारा अगला प्रसारण आप जानते हैं समय, नमस्कार भारत भारती समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।